उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताज़ा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्नों को आपके साथ खोलते हैं और भारत के पूर्वोत्तर हिस्से से जुड़ी गतिविधियां, वहां की सांस्कृतिक झलक, कला और संस्कृति से आपको रूबरू करवाते हैं। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित होता हूँ मैं आपके बीच कमल कुमार प्रजापति।
पूर्वोत्तर डायरी।
श्रोताओं, नए साल की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज के पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक को हम शुरू करते हैं। आज बहुत कुछ विशेष इस कार्यक्रम में आपके लिए है। पूर्वोत्तर राज्यों की वीर गाथाएं आपके साथ इस कार्यक्रम में आज हम साझा करने वाले हैं। कई ऐसी महत्वपूर्ण गतिविधियां जो पूर्वोत्तर राज्यों में विकास को तेज गति से बढ़ा रही हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे और कुछ पारंपरिक उत्सवों की भी हम बात करेंगे। तो इस आधे घंटे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा। आइए सबसे पहले हम सुनते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की वीर गाथाएं। ये श्रृंखला हम कई दिनों से इस कार्यक्रम में प्रसारित कर रहे हैं और आज इस श्रृंखला की अगली कड़ी, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मेघालय और मणिपुर से कुछ वीर बाकुनों की कहानियों की। हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष में पूर्वोत्तर भारत का विशेष रोल रहा है और यहाँ के वीर बाकुरों ने, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सत्ता से लोहा लिया, अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और देश के लिए अपना बलिदान दिया। तो आज ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुनते हैं और इसे सुना रही हैं हमारी सहयोगी प्राची प्रिया।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास आंदोलनों और सभाओं के साथ उन रणभूमियों की स्मृति भी है, जहां सीमित संसाधनों, कम संख्या और कठिन परिस्थितियों के बावजूद कुछ वीरों ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। पूर्वोत्तर भारत की धरती ऐसे ही अनेक बलिदानों की साक्षी रही है। मणिपुर और मेघालय की पहाड़ियों से उठी दो ऐसी गाथाएं आज भी हमें ये याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष देश के दूर दराज कोने कोने तक ब्रिटिश सत्ता से लोहा ले रहा था। सन 1891 का वर्ष मणिपुर के इतिहास में एक गहरी पीड़ा और अदम्य साहस के रूप में दर्ज है। ये वही समय था जब आंग्लो मणिपुर युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। इसी युद्ध में कांगले पाक राज्य की सेना के एक महान योद्धा मेजर पाउना ब्रिजबाशी इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। पाउना ब्रिजबाशी महाराजा कुलचंद्र सिंह के अधीन मणिपुरी सेना के एक वरिष्ठ सेना नायक थे। खोमजोम का युद्ध जो 23 अप्रैल 1891 को लड़ा गया, भारतीय इतिहास की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक माना जाता है। श्रोताओं, एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना थी, दूसरी ओर सीमित संसाधनों और कम संख्या में मणिपुर योद्धा। लेकिन इस असमानता के बीच भी पावना ब्रिजबाशी ने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। खोमजोम की धरती पर लड़ाई रक्तरंजित हो चुकी थी, चारों ओर गोलियों की आवाजें थी और मणिपुरी सैनिक एक एक करवीर गति को प्राप्त हो रहे थे। कहा जाता है कि कई मणिपुरी सैनिक अंतिम योद्धा तक लड़ते रहे। इसी संघर्ष के दौरान जब पावना ब्रिजबाशी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, ब्रिटिश सेना ने उन्हें जीवित पकड़ लिया। यही इतिहास का वो क्षण आता है जो पावना ब्रिजबाशी को केवल एक योद्धा नहीं बल्कि नैतिक साहस का प्रतीक बनाता है। एक मणिपुरी मूल का ब्रिटिश अधिकारी उनके पास आया और उन्हें प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव ये था कि यदि वे ब्रिटिश सेना में शामिल हो जाएं, तो उन्हें उच्च से उच्च पद और सम्मान दिया जाएगा। ये एक लालच भी था और साथ ही एक परीक्षा भी। पावना ब्रिजबाशी का उत्तर संक्षिप्त था, पर उसका अर्थ बहुत मार्मिक। उन्होंने कहा कि विश्वासघात से तो बेहतर मृत्यु है। उन्होंने कहा कि विश्वासघात से बेहतर मैं मर जाऊं। उन्होंने अपने सिर पर बंधा कपड़ा खोला और ब्रिटिश अधिकारी से कहा कि वे उनका सिर काटते। उनके लिए जीवन से अधिक मूल्यवान था स्वाभिमान। श्रोताओं, युद्ध भूमि पर उनका बलिदान मणिपुर के इतिहास में अमिट हो गया। पावना ब्रिजबाशी ने ये सिद्ध कर दिया कि सैनिक की असली शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि उसके चरित्र में होती है, उसके सोच में होती है और उसके अदम्य साहस में होती है। श्रोताओं, आइए मणिपुर की वीरगाथा के साथ अब हम बढ़ते हैं मेघालय की तरफ। दक्षिण की ओर गारो पहाड़ियों में स्वतंत्रता संघर्ष की एक और गाथा हम आपको सुनाते हैं, जहां लगभग दो दशक पहले ही एक और संघर्ष जन्म ले चुका था। ये संघर्ष मेघालय के गारो समाज से उठी उस आवाज का प्रतीक था जिसे इतिहास पातोगन संगमा के नाम से जानता है। पातोगन संगमा, जिन्हें पातोगन निंगमिंजा संगमा भी कहा जाता है, 19वीं सदी के गारो योद्धा थे। उनका जन्म विलियमनगर के पास ही समंदा गांव में हुआ था। वे अपनी शारीरिक क्षमता और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी असली पहचान केवल ताकत नहीं बल्कि अपने लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी थी। सन 1872 में जब ब्रिटिश सैनिक गारो पहाड़ियों में दाखिल हुए और चीसो बिबरा के पास अपना सैन्य शिविर स्थापित किया, तो ये केवल एक सैन्य कदम नहीं था, ये उस भूमि, उस समाज और उस संस्कृति पर अधिकार जमाने की शुरुआत थी जो सदियों से स्वतंत्र रही थी। पातोगन संगमा और उनके साथी योद्धाओं ने इस अतिक्रमण को स्वीकार नहीं किया, ये शायद उनके स्वाभिमान के खिलाफ था। उन्होंने ब्रिटिश शिविर पर आक्रमण किया। उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, केवल तलवारें, ढालें और अपने अधिकार की रक्षा का संकल्प था। जवाब में ब्रिटिश सेना ने गोलियों की बौछार कर दी। इस असमान युद्ध में गारो योद्धाओं को भारी क्षति उठानी पड़ी, परंतु पीछे हटना उनके स्वभाव में नहीं था। इन सबके बीच पातोगन संगमा सबसे आगे लड़ते रहे। अंततः 12 दिसंबर सन 1872 को अपनी मातृभूमि और अपने लोगों की रक्षा करते हुए वे रणभूमि पर वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु ने गारो समाज को शोक में डुबो दिया, लेकिन साथ ही ये संदेश भी छोड़ दिया कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। पावना ब्रजवासी और पातोगन संगमा, दो अलग भूभाग, दो अलग समय, लेकिन एक समान चेतना। दोनों ने श्रोताओं ये स्वीकार नहीं किया कि सत्ता के आगे आत्मसमर्पण ही एकमात्र विकल्प है, ना, दोनों ने ये कर दिखाया कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं बल्कि चरित्र की कसौटी भी होती है। आज मणिपुर और मेघालय की धरती पर इन योद्धाओं की स्मृति जीवित है, उनके नाम स्मारकों, लोक कथाओं और जनस्मृति में बसे हुए हैं। वे हमें ये याद दिलाते हैं कि भारत की स्वतंत्रता उन अनगिनत वीरों का परिणाम है जिन्होंने बिना किसी अपेक्षा के केवल अपने धर्म और अपनी भूमि के लिए बलिदान दिया। पूर्वोत्तर भारत की ये वीर परंपरा आज भी हमें ये सिखाती है कि जब आत्मसम्मान जागता है तब इतिहास स्वयं झुककर नमन करता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची प्रिया।
श्रोताओं, पिछले दिनों प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो दो विशेष सरकार के तंत्र हैं, इनके द्वारा विशेष इंटीग्रेटेड आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जमीनी स्तर पर योजनाओं के लागू होने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो आइए हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा के साथ हमारी सहयोगी मेघना की ये विशेष बातचीत सुनते हैं, जिसमें उन्होंने जमीनी स्तर पर इन विशेष आउटरीच कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की है।
गैंगटॉक में दो दिन का इंटीग्रेटेड आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन हुआ था, जिसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सिक्किम संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा। मानस जी, गैंगटॉक में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा आयोजित इस आउटरीच प्रोग्राम के बारे में हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताइए।
जी, जैसे आपने बताया, ये पिछले साल 28-29 तारीख को ये दो दिन का कार्यक्रम था और यहाँ के जो ITBP सेक्टर हेडक्वार्टर है गैंगटॉक के बगल में ही ताडोंग मेट्रो पॉइंट बोल के, वहाँ हम लोग ने ये दो दिन का कार्यक्रम रखा। इसका मेन एम और ऑब्जेक्टिव ये था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो लक्ष्य है विकसित भारत को 2047 में अचीव करना, उस लक्ष्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उसमें कैसे जागरूकता पैदा किया जाए, और इसके अंदर कई सारे सब थीम थे जिसको हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया। साथ ही हम लोग ने वहाँ पे प्रदर्शनी रखे सरकार के कामों पर, विभिन्न जागरूकता अभियान पर, फिर विभिन्न प्रतियोगिता भी आयोजित किए गए लोगों के लिए, और हम लोग का डिस्कशन प्रोग्राम या पैनल डिस्कशन भी इसमें जुड़ा था।
इस कार्यक्रम का थीम है विकसित भारत 2047। ये आउटरीच प्रोग्राम विकसित भारत के लक्ष्य को कैसे पूरा करेगा?
ये जो हम लोग का दो दिन का आईकॉप था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन का, उसका मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों पे विभिन्न विषय पर जागरूक किया जाए। जैसे हमने बताया कि आईटीबीपी के लिए यहाँ पे क्या गया। अब ये देखिए कि जो सिक्किम है, सिक्किम में आईटीबीपी के जो जवान है वो 16,000-17,000 अल्टीट्यूड पे ये लोग अपने तैनात होते हैं। तो ऐसे दिन आते हैं कि सिर्फ अकेला रहना पड़ता है अपने साथियों के साथ कभी कभार, और ये बहुत ही मुश्किल भरी चैलेंजिंग यहाँ पे उन लोग का काम होता है। तो ये क्योंकि उन लोग के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, ऐसा ऑप्शन भी नहीं होता कि वो जानकारी हासिल कर गए। तो कार्यक्रम का ये उद्देश्य था कि जो देश के लिए सेवा कर रहे हिमवीर जिसे कहते हैं उनको भी इस कड़ी में जोड़ना, और हम लोग की जो जैसे आपने बताया विकसित भारत के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस पर जागरूक करना। और इसी के तहत हम लोग ने, जैसे आपने पहले बताया, हम लोग ने 2 या 3 पैनल हम लोग ने डिस्कशन रखे। एक तो था वंदे मातरम का 150 साल, सरदार पटेल के 150वीं जन्म जयंती, और साथ में जिसको हम लोग कहते हैं मिशन लाइफ, ये बहुत जरूरी है मिशन लाइफ। तो ये 3 पहलू पर हम लोग ने यहाँ पे चर्चा का विषय रखा और हम लोग ने इस पे चर्चा किया। साथ ही में जैसे हमने बताया विभिन्न प्रतियोगिता यहाँ पे रखी कि एक मनोरंजन भी हो साथ में लोगों को जागरूक भी करते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम लोग के सिविलियन बहुत ज्यादा तो नहीं थे क्योंकि हम लोग ने आईटीबीपी कैंप में ही गया, लेकिन फिर भी यहाँ के आसपास के लोग भी यहाँ पे कुछ लोग तो आए, और जो हम लोग ने मेहमान बुलाए वो लोग भी आए, लेकिन ज्यादातर उनके फैमिली और उनके बच्चे इसमें शामिल हुए। तो उन लोग ने एक जागरूकता अभियान था, ज्ञान का एक जरिया था, और साथ में एक मनोरंजन भी इसमें जुड़े हुए थे।
ये कार्यक्रम आम जनता और सरकार के बीच की दूरी को मिटाने के लिए बना था, तो ये कार्यक्रम इस दूरी को मिटाने में कैसे मदद करेगा?
जी, जैसे हम लोग जानते हैं कि सरकार का बहुत सारे डेवलपमेंट स्कीम्स होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, और इनको लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा फायदा लोगों को मिले, एक मुहिम चलाया जाए, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है जागरूकता या अवेयरनेस। बहुत समय लोगों के पास सही खबर नहीं पहुंचते, लोग जागरूक नहीं होते, इसलिए बहुत से चीज सरकार के उन लोगों तक शायद जो कहते हैं आखिरी में जो लोग खड़े हैं उस तक ये खबर नहीं पहुंचते शायद, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे जागरूकता की कमी होती है। ये आईकॉप का यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। जैसे आपने बताया ये सिक्किम सरकार का भी स्कीम हो, भारत सरकार का भी स्कीम हो
जी,
और जो भी इनिशिएटिव है उनको लोगों तक कैसे पहुंचे, लोगों कैसे जागरूक किया जाए। तो जब हम लोग कुछ बताते हैं, जो एक्सपर्ट बताते हैं, हम लोग जितने भी एक्सपर्ट्स को बुलाए, ज्यादा से ज्यादा वो लोग सरकारी अफसर थे यहाँ पे जो एक टॉपिक के ऊपर जानते थे, उन लोगों का एक्सपर्टाइज है, तब वो लोग बताते हैं आम लोगों को या नागरिक को, तो लोग सुनते हैं। तो ऐसे ही एक है कि एक ब्रिज बनता है, जो दूरियां भी होती है तो मिटते हैं, कोई भी डाउट हो तो क्लियर करते हैं। तो ऐसे ऐसे जो सरकार के स्कीम्स है, मुहिम है, इनिशिएटिव है, जैसे मिशन लाइफ के बारे में डॉक्टर राजीव गोगोई वो आए थे और जो यहाँ के बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सिक्किम के हेड, तो उन्होंने बहुत बारीकी से बहुत सारा जानकारी लोगों को साझा किया। मंगल जाखर बोल के डिप्टी डायरेक्टर है माई भारत ऐप के, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स के, तो उन्होंने सरदार पटेल से जुड़े हुए कहानी बताए, और ऐसे भारत सरकार के खेल मंत्रालय कैसे इनको आगे बढ़ा रहे, पदयात्रा कर रहे, तो इसको जानकारी दी। तो ये बहुत सारे बातें हैं जो हमको पहले से नहीं पता था, लोगों को चाहे बारीक जानकारी लोग नीचे सब इसके बारे में जानकारी साझा किया गया। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मुहिम है लोगों को जागरूक करने के लिए, और सरकार के जितने भी अच्छे इनिशिएटिव हैं उसके बारे में और एक कदम है कि लोग जागरूक हो।
इस कार्यक्रम में काफी जरूरी मुद्दों को भी शामिल किया गया है, जैसे कि सरदार पटेल 150 इयर्स ऑफ नेशनल यूनिटी, 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम और मिशन लाइफ, जो कि लाइफस्टाइल फॉर एंटरटेनमेंट हम जिसको जानते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा और विस्तार से बता दीजिए कि कैसे इन मुद्दों को हमारे आउटरीच प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया।
जी, पहले मैं मिशन लाइफ से शुरू करता हूँ। जैसे हमने बताया डॉक्टर गोगोई जी यहाँ पे आए, तो गोगोई जी इस क्षेत्र में एक एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया जैसे आईटीबीपी का जवान है वो लोग अपने पर्सनल लेवल पे फिटनेस है, और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम को मिशन लाइफ को कहते हैं हम लोग, एनवायरमेंट की परिवेश की रक्षा अवेक्षण के लिए यहाँ लोग जीते हैं, यहाँ लोग जीते हैं, इसको मानते हैं। तो इसी कड़ी में और उन्होंने कुछ बातें जोड़ी कि हमको क्या करना चाहिए, लाइट कैसे जलाना चाहिए, एलईडी हमको यूज करना है, पानी का बचत कैसे करना चाहिए, पीने के पानी, हम लोग को जो खान पान है उसमें कैसे ध्यान रखना चाहिए, ये सारे मुद्दे पे उन्होंने जानकारी साझा किया। जैसे दो मुद्दे जैसे मैंने बताया, मंगल जाखर जी ने बताया कि वंदे मातरम, और वहाँ पे बच्चे भी थे आईटीबीपी के जवान के फैमिली के बच्चे थे, तो उन लोग पे देश देश का देशभक्ति का जज्बा जो है उसमें कहते हैं बच्चों को सिखाया गया कि इसका क्या महत्व है, देश के आजादी के समय देश के फ्रीडम जो स्ट्रगल थे आजादी के समय के जो संग्राम थे उसका क्या महत्व था और आज क्या है। सरदार पटेल के जीवन से हम लोग क्या सीख ले सकते हैं, सरदार पटेल की देश के एकत्रीकरण में यूनिटी में क्या योगदान था और हम लोग कहते हैं उसके आगे आने वाले पीढ़ी को हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये सारे बातें जो है सिर्फ ऐसे नहीं कि वहां से बोले ये साझा किया गया, जो दर्शक थे उन्होंने भी पूछा जानकारी साझा किया, तो एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज जिसको है हम वो कह सकते हैं। तो ऐसे ही ये चीजों को आगे बढ़ाया गया और सिर्फ यही नहीं आने वाले दिनों में भी यहाँ सीबीसी और पीआईबी की तरफ से यहाँ गैंगटॉक में किया हम लोग और भी आने वाले दिनों में यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं बाकी जो जिले हैं बाकी जो हिस्से वहाँ भी हम लोग कार्यक्रम रखे और ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग के साथ जुड़े।
जी आउटरीच प्रोग्राम सिक्किम की आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आम जनता को इस कार्यक्रम से क्या क्या लाभ मिले आपके हिसाब से?
जी अगर हम लोग सिर्फ इस प्रोग्राम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसमें ज्यादातर आईटीबीपी के ही फैमिली के लोग थे और आईटीबीपी के जवान थे, लेकिन उससे पहले हम लोग ने जो भी कार्यक्रम किया यहाँ आम लोगों के लिए किया, हम लोग ने कॉलेज गए, हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी गए और हम लोग आंगनबाड़ी सेंटर गए, तो यहाँ आम लोग जो थे हो महिला हो बच्चे हो आम लोग हम लोग के साथ जुड़े बुजुर्ग हो और हम लोग ने बहुत सारे विषय पर इन लोगों के साथ जानकारी साझा की, जैसे हम लोग ने फिर क्विज कॉम्पिटिशन भी रखे, पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखे, महिला के लिए हम लोग ने यहाँ पे म्यूजिकल शेयर कंपटीशन रखे, उन लोग के लिए भी टॉपिक बेस्ड हम लोग ने क्विज के इवेंट रखे, जैसे आंगनबाड़ी सेंटर में हम लोग हेल्थ के लिए उन लोग से क्वेश्चन आंसर किए और आने वाले दिनों में भी हम लोग ऐसे करेंगे जैसे मैंने पहले बताया। तो यहाँ के जो आम लोग हैं जिनको हम लोग के साथ जुड़ेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जागरूकता के बारे में बहुत से जानकारी साझा करेंगे, साथ ही भारत सरकार और जो सिक्किम सरकार है दोनों की इनिशिएटिव के बारे में जानकारी साझा करेंगे। हम लोग यहाँ जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हो सबको बुलाते हैं, वो लोग अपने अपने डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्रीज के विभाग के बारे में जानकारी साझा करते हैं, साथ में लोग भी सवाल करते हैं क्योंकि एक मौका है प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए कि जो विभाग के प्रमुख है उन लोग के साथ वार्तालाप करें, एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो, तो उन लोग के लिए लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है कि जो जानकारी चाहिए कोई डाउट हो उसको क्लियर कर पाए। तो मेरे ख्याल से ये आने वाले दिनों में भी सिक्किम के लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा।
मानस जी आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए।
थैंक यू।
श्रोताओं अब हम चर्चा करने जा रहे हैं सिक्किम के एक विशेष उत्सव नामसुंग फेस्टिवल के बारे में। नामसुंग महोत्सव का 49वां संस्करण सिक्किम में धूमधाम और परंपरा के साथ मनाया गया, यहाँ की लोक संस्कृति की झलक इस उत्सव में देखने को मिली और कई रोचक पारंपरिक प्रतियोगिताओं का भी इस उत्सव में आयोजन हुआ। तो आइए इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि कौन कौन सी वो प्रतियोगिताएं और परंपराएं इस उत्सव में देखने को मिली।
सिक्किम राज्य के जुनगु क्षेत्र में स्थित नमप्रिकदांग के पवित्र स्थल पर हाल ही में 49वां नमप्रिकदांग नामसुंग उत्सव पूरी श्रद्धा और सांस्कृतिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस वर्ष ये उत्सव एंसेस्ट्रल रिदम विषय के अंतर्गत आयोजित किया गया। ये 5 दिवसीय उत्सव नमप्रिकदांग नामसुंग उत्सव आयोजन समिति द्वारा 27 से 31 दिसम्बर 2025 तक आयोजित किया गया। उत्सव का उद्देश्य अपनी पारंपरिक विरासत को सहेजना, समाज में एकता बनाए रखना और आने वाली पीढ़ियों तक पूर्वजों की संस्कृति को पहुंचाना रहा। इन दिनों में पारंपरिक पूजा पाठ, लोक नृत्य, पारंपरिक खेल और समृद्धि व अच्छे भविष्य की कामनाओं से जुड़े कई आयोजन किए गए। उत्सव के उद्घाटन समारोह में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के अध्यक्ष श्री सोनम नोरगे लाचुंगपा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ उद्यानिकी विभाग की अध्यक्ष सुश्री ओंगकित लेपचा, मंगन के पुलिस अधीक्षक श्री लाल बहादुर छेत्री, विशेष कार्याधिकारी श्री उगेन लेपचा, जिला पंचायत मंगशिल्ला की सदस्य सुश्री अमृता लिम्बू, जोनगू के खंड विकास अधिकारी श्री महेंद्र तमांग, जिला प्रशासन के अधिकारी, पंचायत सदस्य, आयोजन समिति के सदस्य और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथि श्री सोनम नोरगे लाचुंगपा ने अपने संबोधन में आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि 49वें नमप्रिकदांग नामसुंग उत्सव का सफल आयोजन सभी के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि संस्कृति और परंपराएं किसी भी समाज की पहचान होती हैं और ये उत्सव वर्षों से पूर्वजों की विरासत को जीवित रखे हुए है। उन्होंने सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग के प्रयासों की भी प्रशंसा की जो राज्य के सभी समुदायों को अपनी परंपराओं को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जोनबू क्षेत्र पहले से ही पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है और भविष्य में ये ग्रामीण पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। उत्सव के पहले दिन लेपचा समुदाय की लोक नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके साथ ही पारंपरिक खेलों के अंतर्गत रस्साकशी प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 5 दिनों तक चले इस उत्सव में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें लेपचा लोक नृत्य प्रतियोगिता, रस्साकशी, तीरंदाजी प्रतियोगिता, लकड़ी दौड़, धान कूटने की प्रतियोगिता, लेपचा पारंपरिक फैशन शो, पहली बार आयोजित पर्वतारोहण प्रतियोगिता, बांस बुनाई, बाल गूंथने की कला, पत्थर फेंकने की प्रतियोगिता, कद्दू तोड़ने की प्रतियोगिता, पानी भरने की प्रतियोगिता और अन्य पारंपरिक गतिविधियां शामिल रहीं। साथ ही विभिन्न संगीत बैंड और कलाकारों की प्रस्तुतियों ने उत्सव को और भी रंगीन बना दिया। उत्सव स्थल पर कई प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए गए, जहां स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्तुएं और अन्य उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। 49वें नमप्रिक दांग नामसोंग उत्सव के माध्यम से आसपास के कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को भी विशेष रूप से लोगों के सामने रखा गया। इनमें ब्रोंगक्योंग, लिंगदेम के उंग्रुम गर्म जल स्रोत और झरने तथा ही ग्याथांग स्थित लेपचा केनपुल रूसुआम शामिल रहे। इस तरह सिक्किम के जोनगू क्षेत्र में आयोजित नमप्रिक दांग नामसोंग उत्सव ने एक बार फिर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक एकता और विरासत के संरक्षण का मजबूत संदेश दिया। हमारे सिक्किम संवाददाता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विशाल शर्मा।
अरुणाचल प्रदेश विभिन्न विकास परियोजनाओं से समृद्ध हो रहा है और विशेष तौर पर यहाँ के युवाओं में राष्ट्रीय चेतना का लगातार विकास हो रहा है और इसी क्रम में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से एक विशेष भेंट की और इस विशेष भेंट में अरुणाचल प्रदेश की क्षमताओं की चर्चा हुई और विशेष तौर पर अरुणाचल प्रदेश की युवा क्षमता पर बल दिया गया और अरुणाचल प्रदेश में युवा किस तरह से राष्ट्रीय चेतना में अपनी हिस्सेदारी निभा सकते हैं इसके बारे में विशेष चर्चा हुई। और भी तमाम विकास परियोजनाओं का आकलन और चर्चा इस बैठक में हुई। तो आइए हमारे संवाददाता मनोज की इस विशेष रिपोर्ट में जानते हैं कि राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की इस विशेष बैठक में क्या कुछ विशेष मुद्दों पर बातचीत हुई।
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने हाल ही में नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने अरुणाचल की जनता की ओर से उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। बैठक में राज्यपाल ने राज्य के सतत और समावेशी विकास की जानकारी साझा की तथा विकसित भारत के राष्ट्रीय विजन में अरुणाचल प्रदेश के सार्थक योगदान के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ये प्रयास विकसित अरुणाचल की स्थानीय और जन केंद्रित रोडमैप से निर्देशित है, जिसमें संतुलित विकास, बेहतर संपर्क व्यवस्था, मानव संसाधन विकास तथा समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में हो रही प्रगति से भी अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों की समग्र सुरक्षा स्थिति, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा परिस्थितियों की संक्षिप्त जानकारी दी। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के युवाओं की जीवंत ऊर्जा पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि युवा वर्ग उद्यमिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से भागीदारी ले रहे हैं। कला और संस्कृति के प्रति गहरा सम्मान रखते हुए राष्ट्रभक्ति की प्रबल भावना को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा है कि युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता और अनुशासन राज्य के परिवर्तन और भावी नेतृत्व की प्रमुख शक्ति बनकर उभर रहे हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को ऑर्किड्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक की एक प्रति भी भेंट की। ये पुस्तक राज्य में पाए जाने वाली ऑर्किड प्रजातियों की असाधारण विविधता को दर्शाने वाला एक समृद्ध, विस्तृत और संदर्भपरक संकलन है। इसमें कई दुर्लभ स्थानीय और वैश्विक वनस्पति महत्व की प्रजातियां शामिल है, जो अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध प्राकृतिक विरासत, संरक्षण और पारिस्थितिक दायित्व के प्रतीक है। एक अन्य बैठक में राज्यपाल ने नई दिल्ली में ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से भी मुलाकात की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें वाइब्रेंट वॉटर विलेज कार्यक्रम, अग्निपथ योजना तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सद्भावना परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के युवाओं की अपार क्षमता को रेखांकित करते हुए उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने के अधिक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल राष्ट्र सुरक्षा सुदृढ़ होगी, बल्कि युवाओं को अनुशासन, कौशल विकास और राष्ट्र सेवा की भावना से भी सशक्त किया जा सकेगा। बैठक में राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अग्रिम गांवों में विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार और सशस्त्र बलों के बीच बेहतर समन्वय की सराहना की और कहा कि विकास तथा सुरक्षा साथ साथ आगे बढ़ने चाहिए। सीमा प्रबंधन और उग्रवादी अभियानों में अपने व्यापक अनुभव का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने थिएटर कमांड्स के महत्व तथा भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन और युद्ध क्षमताओं को निरंतर सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। नॉर्थ ईस्ट डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
त्रिपुरा अगरतला में एक विशेष साहित्यिक आयोजन रविन्द्र भवन परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें बहुत से लेखकों और रचनाकारों की भागीदारी रही। तो ये क्या विशेष आयोजन था, आइए हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य की इस खास रिपोर्ट में सुनते हैं।
अगरतला की ठंड ने साहित्य की गर्मजोशी को कम नहीं होने दिया है। आमतौर पर जहां मुख्य धारा की किताबें और लेखक चर्चा में रहते हैं, वही रविन्द्र भवन परिसर में एक अलग तरह की साहित्यिक हलचल देखने को मिली। यहां शब्द निडर थे और शैली बेझिझक। मौका था 10वें नॉर्थ ईस्ट लिटिल मैगजीन कॉन्फ्रेंस का, जहां साहित्य के हाशिए पर मौजूद रचनाएं और विचार केंद्र में नजर आए। लिटिल मैगजीन का इतिहास बंगाली साहित्य में कोई दशकों पुराना है। 70, 80 और 90 के दशक से ये पत्रिकाएं नए और अलग सोच की आवाज बनती रही है। इनका उद्देश्य हमेशा से स्थापित धारणाओं को चुनौती देना और उन रचनाओं को जगह देना रहा है जिन्हें मुख्य धारा में स्थान नहीं मिल पाता। डिजिटल दौर और कई तरह की चुनौतियां के बावजूद लिटिल मैगजीन आंदोलन आज भी सक्रिय है और लगातार आगे बढ़ रहा है। 26 से 29 दिसंबर तक चले इस सम्मेलन में साल के आखिरी दिनों की ठंड के बावजूद त्रिपुरा में 125 से अधिक संपादक, लेखक और प्रकाशक एकत्र हुए। इस बार सम्मेलन की खास बात यह रही कि यह केवल बंगाली भाषा तक सीमित नहीं था। रविन्द्र भवन परिसर में लगे स्टॉलों पर पूर्वोत्तर भारत की भाषाई विविधता साफ दिखाई दी। कोकबोरोक, मणिपुरी, चकमा और अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं की किताबों ने पाठकों का ध्यान खींचा।
दिस इज द 10th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न लिटिल मैगजीन कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड एट अगरतला फ्रॉम 26th ऑफ दिसंबर। सो हियर इन वी हैव गॉट 125 एंट्रीज थ्रू आउट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, मणिपुर, सिलचर एंड सम अदर प्लेसेस एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम त्रिपुरा। दिस इज द 10th ऑफ इट्स काइंड। इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2005 एट शिलोंग। दिस इज द 10th ईयर एंड वी हैव गॉट ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स फ्रॉम द ऑथर्स, illustrators, editors of Little Magazine and those who love book, love Little Magazine, they have also participated and it's a huge extravaganza and this year the main thing is that it is not only bound with the Bengali Little Mag, it is for all language of Northeast.
चार दिनों तक चले इस आयोजन में किताबों की खरीदी बिक्री के साथ साथ विचारों का गहरा आदान प्रदान हुआ, दुर्लभ पुस्तकों का आदान प्रदान हुआ और छोटी भाषाओं के भविष्य, उनके संरक्षण और लिटिल मैगजीन आंदोलन की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। लेखक और लेखिकाएं एक साथ बैठकर अपनी कविताएं और कहानियां पढ़ते नजर आए। इन रचनाओं में अपने जमीन से जुड़ाव, सामाजिक संघर्ष और बेहतर भविष्य के सपने साफ झलक रहे थे। रविन्द्र भवन परिसर में दिन ढलने के साथ ये बात साफ हो गई कि जब तक कोई ऐसा विचार रहेगा जो मुख्य धारा के लिए असहज या बहुत साहसी होगा, तब तक उसे मंच देने के लिए लिटिल मैगजीन की भूमिका बनी रहेगी। पूर्वोत्तर डायरी के लिए सुमन भट्टाचार्य, आकाशवाणी अगरतला।
श्रोताओं, आज का पूर्वोत्तर डायरी का अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का अंक हर बार की तरह रुचिकर लगा होगा और इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी ईमेल आईडी का पता नोट करें, airnsdtalks@gmail.com। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रतिक्रिया के लिए नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044, 9289094044। हम अगले रविवार शाम 5:30 बजे आपके साथ पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक अक्षत ममगाई।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।